वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह अनकबूत की आयत क्रमांक 56 और 57 की तिलावत सुने।
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون।
हे मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो, निसंदेह मेरी धरती विशाल है, अतः तुम मेरी ही उपासना करो। प्रत्येक जीव मृत्यु का स्वाद चखने वाला है, फिर तुम सब हमारी ही ओर लौटाए जाओगे।
इस्लाम का एक रोचक आदेश ईमान की रक्षा के लिए पलायन है। इस्लाम के आरंभिक काल में मुसलमान अनेकेश्वरवादियों के भारी दबाव में थे और स्वतंत्रता के साथ अपने धार्मिक दायित्वों का पालन नहीं कर सकते थे। अतः पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अन्य ईमान वाले मक्के से मदीने की ओर पलायन कर गए और वहीं रहने लगे।
ये आयतें एक मूल सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहती हैं कि शहर और देश से प्रेम व निर्भरता तुम्हारे ईमान में प्रगति और ईश्वर की उपासना के मार्ग में आड़े न आए। ये मत सोचो कि तुम हमेशा इस संसार में जीवित रहोगे, अतः जीवन के संबंध में तुम्हारा लक्ष्य केवल धन एकत्रित करना और अपनी स्थिति को मजबूत बनाना नहीं होना चाहिए। अगर तुम इस बात पर ध्यान रखोगे कि परलोक का जीवन अनंत है, तो तुम कभी भी हद से अधिक अपने शहर और देश पर मोहित नहीं रहोगे।
इन आयतों से हमने सीखा कि निवास स्थान के चयन में अपने धर्म व ईमान की रक्षा पर गंभीर रूप से ध्यान देना चाहिए।
धर्म की रक्षा के लिए पलायन ईमान वालों के दायित्वों में से एक है।
किसी शहर या क्षेत्र से प्रेम व जुड़ाव के चलते पद भ्रष्टता में ग्रस्त होने का बहाना प्रलय में स्वीकार नहीं होगा।
मृत्यु व्यापक है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, अतः आवश्यक है कि हम अपने जीवन के समीकरणों में मौत के बाद के जीवन के बारे में भी कार्यक्रम बनाएं।
आइए अब सूरह अनकबूत की आयत क्रमांक 58 और 59 की तिलावत सुने।
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون।
और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें हम स्वर्ग की उच्च मंजिल के ऐसे कमरों में जगह देंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, जिनमें वे सदैव रहेंगे। और क्या ही अच्छा प्रतिफल है अच्छे कर्म करने वालों का। ये वही लोग हैं जिन्होंने धैर्य से काम लिया और जो अपने पालनहार पर भरोसा रखते हैं।
इन आयतों में ईश्वर उन लोगों से जो अपने ईमान की रक्षा के मार्ग में कठिनाइयां सहन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपना शहर और देश छोड़ देते हैं, वादा करता है कि परलोक में वे स्वर्ग के सबसे अच्छे घरों में रहेंगे और उसके असीम अनुकंपाओं से लाभान्वित होंगे। ये आयतें कर्म, धैर्य और ईश्वर पर भरोसे का ईमान वालों को ईश्वरीय दया के स्वर्ग में पहुँचाने वाले तीन महत्वपूर्ण कारकों के रूप में उल्लेख करती हैं।
यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि अच्छे कर्म के बिना ईमान का कोई मूल्य नहीं है। कर्म धैर्य व संयम के बिना परिणाम तक नहीं पहुँचता, और धैर्य व संयम ईमान पर भरोसा किए बिना जारी नहीं रह सकता।
इन आयतों से हमने सीखा कि स्वर्ग और स्वर्ग की अनुकंपाओं की प्राप्ति की शर्त ईमान और सत्कर्म है।
ईमान की रक्षा के लिए जो चीज़ें संसार में गंवानी पड़ती हैं परलोक में ईश्वर उनकी क्षतिपूर्ति करेगा और उनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें उन्हें प्रदान करेगा।
संयम व प्रतिरोध समस्याओं पर विजय और जीवन के विभिन्न चरणों में सफलता का मंत्र है। स्पष्ट है कि ईमान वालों को, जो हमेशा शत्रुओं की यातनाओं और अपमान का पात्र बनते हैं, दूसरे से अधिक संयम व प्रतिरोध से काम लेना चाहिए।
आइए अब सूरह अनकबूत की आयत क्रमांक 60 की तिलावत सुने।
لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم
اور کتنے ہی چلنے والے جیو ہیں جو اپنی روزی پراپت نہیں کر سکتے ایشور ہی انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔
پچھلی آیتوں میں ایمان کی رکشا کے لیے पलायन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। ये आयत उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि कुफ्र की भूमि से पलायन के कारण रोजगार से हाथ धो बैठने और जीवन यापन में कठिनाई से मत घबराओ। अगर पलायन आवश्यक हो तो पलायन कर जाओ और इस बात पर विश्वास रखो कि सबको रोजी और आजीविका देने वाला ईश्वर ही है। जो ईश्वर धरती व आकाशों के सभी जीवों को रोजी देता है वो तुम्हें भी नहीं भूलेगा।
जो जीव अपने घरों व घोंसलों में खाना एकत्रित नहीं कर सकते और जो हर रोज़ खाने की खोज में बाहर निकलने पर विवश होते हैं, वे भी खाली हाथ नहीं लौटते और ईश्वर उन्हें उनकी रोजी प्रदान करता है। मनुष्य उन पशुओं से कम नहीं है और प्रयास व कोशिश के माध्यम से अपनी आजीविका प्राप्त कर सकता है।
अगर अपने देश से दूरी व पलायन के कारण मनुष्य अपना रोजगार गंवा बैठे तो पलायन के बाद उसकी क्षतिपूर्ति की संभावना है। लेकिन अगर वो अपना जीवन कुफ्र व अनेकेश्वरवाद के मार्ग में बिताए या अत्याचार के सामने झुक जाए तो इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कुफ्र व अत्याचार मनुष्य को मानवता के मार्ग से ही हटा देता है।
इस आयत से हमने सीखा कि ईश्वर के मार्ग में पलायन करने वालों को अपनी रोजी की ओर से चिंतित नहीं होना चाहिए और आजीविका के भय से ईश्वर के मार्ग में पलायन को नहीं छोड़ना चाहिए।
ईमान वाला व्यक्ति हमेशा ईश्वर पर भरोसा करता है और आजीविका गंवाने के भय से अपने दायित्वों के निर्वाह में ढिलाई नहीं करता।
ईश्वर ने जो सृष्टि का रचयिता है, मनुष्यों सहित सभी जीवों की रोजी को सुनिश्चित बनाया है।
आइए अब सूरह अनकबूत की आयत क्रमांक 61 की तिलावत सुने।
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ
اور یدی آپ انیک ایشوروادیوں سے پوچھیں کہ کس نے آکاشوں اور دھرتی کی رچنا کی اور سوریہ اور چندرما کو اپنے ادھین کیا तो निश्चित रूप से वे कहेंगे कि अल्लाह ने, तो वे किस प्रकार सत्य की ओर से फिरे जाते हैं।
मक्के में रहने और मूर्तियों की पूजा करने वाले अनेकेश्वरवादी रचयिता के रूप में तो ईश्वर को मानते थे, लेकिन उनकी ये भी आस्था थी कि उनके मामलों का संचालन सूरज, चंद्रमा, सितारों या फिर मूर्तियों के हाथ में है। दूसरे शब्दों में वे ईश्वर को रचयिता तो मानते थे, लेकिन उसे पालनहार के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, अर्थात उनके अंत व रोजी में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है।
विचित्र बात यह है कि आज भी बहुत से लोग ईश्वर को अपना रचयिता मानते हैं, लेकिन उसे पालनहार के रूप में स्वीकार नहीं करते और उसके कानूनों व आदेशों का पालन नहीं करते। इन लोगों का मानना है कि मनुष्य को अपने जीवन में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है और वो जिस प्रकार चाहे फैसला कर सकता है और उसके आधार पर कर्म कर सकता है।
इस आयत से हमने सीखा कि आस्था संबंधी मामलों में दूसरों के साथ संयुक्त बिंदुओं से आरंभ करना चाहिए और फिर बात को जारी रखना चाहिए। मक्के के अनेकेश्वरवादियों से मुसलमानों का संयुक्त बिंदु ईश्वर के रचयिता होने पर उनकी आस्था थी।
सत्य से मुंह मोड़ना ऐसा खतरा है जो सभी के सामने मौजूद है। जीवन में ईश्वर को पालनहार माने बिना उसे रचयिता मानना एक प्रकार से सत्य से विचलित होना है।